चीज को प्राप्त किया और उसको उन्होंने क्या किया, उन्हीं स्वरूप दामोदर स्वरूप की कृपा से अनभिज्ञ होते हुए इस चीज को चुटकी बजाते में छड़ बात में कर दिया, कोई साधन नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ा, ये गुरु की कृपा है। इसलिए साधु मात्र साधु संग जितने साधन भजन उनमें सबसे श्रेष्ठ है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल साधुओं का संग करेंगे, ऐसा ही मान लिया। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न साधन करेंगे न भजन, और बस साधुओं के साथ में रहेंगे, ऐसे नहीं हो, अनुगमन करो, जैसा करते हैं, जैसा चलते हैं, जैसा साधन भजन करते हैं, ऐसा करो, तब तो होगा। इसलिए सर्व साधन समस्त साधनों का यह जो निरूपण किया गया है, साधु संघ के बिना हरि नाम शुद्ध नहीं, साधु संघ के बिना अकेले हम घर में भजन करेंगे ये भी संभव नहीं। साधु संघ प्रत्याग करे छेड़े और घरेते साधन भजन करबो निर्जने एवटी असंभव। साधु संघ के बिना भगवत सेवा इत्यादि ये भी असंभव, इसलिए साधु संघ मुख्य है। साधु संघ में नाम करने से वो कृष्ण ब्रज में जाएंगे और अद्वैतवादी मायावादियों के संग में हरिनाम करने से मुक्ति होगी, और कर्मियों के संग में हरिनाम करने से वो हरिनाम कर्म का फल जो है स्वर्ग इत्यादि देगा, धन संपत्ति देगा, प्रेम नहीं देगा। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पद, कोटि कोटि जन्म एक दो जन्म में नहीं। इसलिए साधु संघ में रह करके साधुओं का आचरण कर, साधुओं के राज साथ में रहते हैं और रोज साधुओं के साथ में प्रसाद भी पाते हैं, रोज साधु के साथ में प्रसाद पाएंगे, किंतु उनके विचारों को नहीं लेते। उम्र भी हो गई है 60-70 वर्ष की, सब प्रकार से रिटायर्ड भी हो गए हैं, घर वाले उनको चाहते नहीं, कहते घर से निकल जाओ, तभी नहीं निकलते, मरना अब 2-4 दिन बाकी है तभी नहीं करेंगे। इसलिए अभी से चेतना चाहिए, अभी से भी थमपूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। हरि भजन कष्टकर नहीं है, बहुत कष्ट की बात नहीं, बहुत सरल है, किंतु कष्टकर किन के लिए है, जिनको संसार में ममता लग गई है उनके लिए बहुत कठिन है। ये ममता छूटती नहीं, घर वाले भी छोड़ाते हैं, सब कोई लगे, किंतु मैं नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कहते हैं। और इनको सुन करके यदि साधुओं के चरणों में आश्रय लेकर के साधुओं के व्यवहार चरित्र आचरण यदि नहीं किया तो कैसे ये मनुष्य जन्म सफल होगा। इसलिए वस्तुतः महत् संगई हरि भजन हरिनाम करना श्रेष्ठ नहीं है, श्रवण करना श्रेष्ठ नहीं है, स्मरण करना श्रेष्ठ नहीं है, साधु संघ में हरिनाम, साधु संघ में श्रवण, साधु संघ में कीर्तन, साधु संघ में स्मरण, ये श्रेष्ठ है, ऐसे समझो। इसलिए रूप गोस्वामी ने भी बतलाया, नाम करो तो कैसे करो, स्मरण करो तो कैसे, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसनामनसीनियो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलामि इत्युपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार है शुद्ध गुरु रसी तत्वज्ञ हो, ब्रजवासी गुरु हो, ब्रज के भावों वाला, उनके साथ में ब्रज में रह करके उनके अनुगत्य में मन को भगवान की लीला कथाओं में लगाकर उनके जो नाम हैं मुख्य नाम राधाकांत राधा रमन रास बिहारी यशोदानंदन नंदनंदन ये सब नाम, ये सब यदि नाम करता है तो शीघ्र ही ब्रज के भाव को प्राप्त। और यदि यही नहीं करके लाख जन्म करेगा साधुओं संघों के अनुगत्य विहीन कर, केवल भोजन में और रहने के लिए एक साथ रहेगा, कहाँ रहते हैं मठ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं मठ में, ऊपर तला में रहते हैं, ऊपर तला मथुरा में कहाँ है, जमुना के किनारे हमारा घर है, कौन गली में, होली गली में, कोयला गली में, होली गली में, कौन कौन सब गलियां, उस गली में रहता हूँ, वो प्रभु नहीं छोड़ेंगे, चाहे ऊपर तला में बैठते हों कि नीच के तला में हो, वो नहीं देखते, देखते हैं साधुओं का आचरण करता है कि नहीं ठीक ठीक। इसलिए साधु संघ ही मत संघ ही समस्त साधन वर्गों में श्रेष्ठ है। इसलिए साधु, मैं बहुत बार ये कहता हूं, साधु संघ में हरिनाम करो, साधु संघ में श्रवण करो, साधु संघ में सब कुछ साधन, तब तो सहज ही हो जाएगा। आज इन्होंने साधुओं का संग छोड़ करके, मैं यहाँ पर नाम करने का समय नहीं मिलता है, वहाँ पर जाकर के 3 लाख हरिनाम करूँगा, 3 लाख है 7 लाख नाम करो ना तुम, डूबेगा। एक आदमी 3 लाख हरिनाम करने वाले हमारे पास में आए, बोले महाराज जी मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ था तो बड़ा अच्छा था, आप लोगों को छोड़ करके वहाँ चला गया गिरिराज गोवर्धन के एकदम निकट में मैं बैठा और वहीं पर रहता हूँ और वहाँ रह करके भजन करता हूँ, 3 लाख हरिनाम चेष्टा करता हूँ, किंतु रात में इतना भय लगता है कि ये मरा, कोई भूत आकर के गला दबा दिया, कोई क्या हुआ, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा जी अभी और कुछ दिन रहो, अनुभव करो, इसके बाद में देखा जाए। लोग समझते नहीं, इसलिए साध्य वस्तु, अभी हम लोग साध्य माने किसको, साधु संघ को, साधुओं का संघ ही हमारा लिए साध्य वस्तु है। साधु संघ मिल गया तो हमारा सब कुछ ठीक है, और साधु संघ नहीं मिला तो कुछ नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति भी है, कुछ नहीं जानता, किंतु साधुओं के मुख से जब राधा कृष्ण के विलास की बातें कहेंगे, जब भक्ति रसामी सिंधु बतलाएंगे, उज्जवल नीलमणि की बात बतलाएंगे, हमारे रूप गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ कौन विदग्ध माधव ललित माधव की बात बतलाएंगे, उनके रास विलास की बातें कहेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति भी उनको सुन करके चित्त रमा करके और सर्वश्रेष्ठ फल लाभ कर, नाम भी थोड़ा होने पे भी कोई बात नहीं, कृष्ण से संबंध जोड़ देगा। ये संबंध जोड़ने के ऊपर में ही सब कुछ, यही साधु लोग, ऐसे रसिक साधु संघ के द्वारा ऐसे नहीं होगा। यहीं पर आप लोग हैं, उत्साह से चल रहे हैं, 5 दिन 10 दिन मत आइए, देखिए क्या दशा होती है। 10 दिन नहीं आने पर हृदय सूख जाएगा, भजन करने की लालसा भी नहीं आएगी, सेवा में रस भी नहीं आएगा। अब इसकी सार शिक्षा बतला रहे हैं ये श्लोक। अभी इतने दिनों तक हमने 3-4 महीने तक इसी श्लोक की व्याख्या, एक एक ही श्लोक उसी की व्याख्या में ही आया, अब उसका सार में बतला रहे हैं। साधु संघ में असाधु व्यक्ति भी साधु बन जाता है, यह सार हुआ। असाधु व्यक्ति भी, समस्त साधनों से हीन व्यक्ति भी, कोई साधन नहीं करता है, कोई ज्ञान नहीं है, किंतु साधु संघ में आने पर वो साधु बन जाता है। साधनोति साध्यत इति साधु, साधु किसको कहते हैं, कृष्ण प्रेम की जो साधना करते हैं वो साधु हैं। जो इसको साधु, जो प्रेम कृष्ण प्रेम की साधना नहीं करते, उसके लिए बढ़ाने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वो साधु नहीं है। आम ब्रह्मास्मि वाले यथार्थतः साधु नहीं। साधु कौन है, ब्रज के भावों को लेकर के साधनोति प्रेम, प्रेम की साधना करता है तो वो साधु है। साधु होने के लिए जो यत्न कर रहे हैं स्वयं और दूसरों से यत्न कराते हैं वो साधु हैं। जैसे बतलाया, कोई कोई आचार करते हैं, प्रचार नहीं करते, कोई कोई प्रचार करते हैं, कोई आचार नहीं, तो जो लोग आचार नहीं करते केवल प्रचार करते हैं वो कर्मी हैं, सीधे साधु, उनसे भक्ति का कोई संबंध नहीं। और जो लोग स्वयं आचरण करते हैं और प्रचार नहीं करते वो अर्ध साधु हैं, और जो लोग स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं भगवान की तरफ में, उनको भी झुका लेते हैं, करा देते हैं, ये यथार्थ साधु। इसलिए हरिदास ठाकुर को करें, तुम ही नामेर आचार और प्रचार करते हो, इसलिए श्रेष्ठ जगत के आप आर्य हैं, जगत गुरु आप हैं। हृदय में जितने प्रकार के बद्धमूल कुसंस्कार हैं उन सब, यही हमारे भजन में बाधक हैं, साधु संघ इसको सहज ही दूर कर देता है। अपनी कथाओं से उसके हृदय को ऐसे बना देता है जो उसको सोचने की भी सोचने का भी समय नहीं। एक डकैत है, खूनी, खूनी डकैत बेड़ों में रहता है, दिन भर अपने भी व्यस्त रहता है, त्रस्त रहता है, बड़ा चिंतित है कब पुलिस पकड़ लेगी क्या। किसी साधु के संगत में आकर के और हरिनाम का आश्रय किया और साधु के संग में रहने सारी मलिनता दूर हो जाएगी बात क्षण मात्र में। ये सब कुसंस्कार जो हैं, कुसंस्कार कैसे, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक की स्त्री हूं, वो हमारे पति हैं, मैं अमुक का बेटा हूं, ये मेरी संपत्ति है, मरते दम तक प्राण जा रहा है तो भी ये समझता कि ये मेरी धन, मेरा धन है, उस समय तक नहीं उसके बुद्धि में नहीं आती ये हमारा कुछ नहीं है छोड़ करके कैसे जा रहा, तभी वो चेष्टा करता है मैं लिख जाऊं अपने बेटों को और दौहित्र को और सबको लिख करके जाऊं। इस प्रकार कुसंस्कार ध्वंस कर सुसंस्कार में प्रतिष्ठित करने के लिए साधु संघ के समान और कोई चीज नहीं। हरिनाम केवल करो नहीं होगा, केवल हरिनाम करो, अंत में साधु संघ मिलेगा तब फिर वो नाम शुद्ध होगा तब आगे बढ़ेंगे, केवल हरिनाम से। ये वाल्मीकि जी ने डकैत स्थिति में हरिनाम किया, कैसे किया, वैसे नाम करना तो लाखों करोड़ों जो कृष्ण कृष्ण राम करते हैं कुछ नहीं होता, उनका क्यों हो गया मरा मरा कहने से, ये साधु संघ नारद जी जैसे गुरु मिल गए, ये सब संस्कारों को ध्वंस कर सकते, ऐसे गुरु की होनी चाहिए तलाश। इसलिए साधु लोग स्वयं सदाचार पालन करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, इसलिए सब प्रकार साधु का आचरण और अनुगत होने का नाम ही साधु संघ। साधु संघ में रहकर के साधुओं का आचरण विचार ग्रहण करके हम हरिनाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तब तो हम लोग साधु हो जाएं, अन्यथा हम वही करेंगे जो मैं समझता हूँ साधुओं के संग में रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा रहूँगा सोऊंगा ये सब करूँगा, किंतु करूँगा वही जो मैं ठीक समझता हूँ, तब तो साधु संग नहीं होगा। इसलिए अब सार क्या हुआ, इस जगत में साध्य और साधन साधु संग, जो इसके अनुगत होकर के साधु संग में भगवत आराधना का साधन करेगा वो तो सहज ही पा जाएगा, और साधु संग नहीं करके हजार चेष्टा करो नहीं होगा। इसीलिए अभी बतलाया गया और कोई उपाय से कोई साधन का मैं वशीभूत नहीं हूं, केवल साधु संग जैसे हमको वशीभूत कर देता है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अब यहां पर शंका हो सकती है साधु संग में भगवान वशीभूत हो जाते हैं, साधु संग के समान भले ही भगवान वशीभूत न हो तो भी योग व्रत इत्यादि के द्वारा कुछ तो वशीभूत हो जाएंगे, इसलिए योग इत्यादि भी करना चाहिए कोई यदि ऐसा समझ तो करें। भाई कभी भी वशीभूत नहीं हूं, इसलिए सबको छोड़ करके जितने भी भक्ति के अतिरिक्त साधन सबको छोड़ करके शुद्ध भक्ति में आने की चेष्टा करो। इसमें एक चीज को और समझो, साधु संघ की इतना भगवान ने महिमा बतलाई कि इसे ये तात्पर्य निकलता है भगवान की अपेक्षा भी भगवान की कोई सेवा करता है और कोई उनके प्रिय भक्तों की सेवा करता है तो भगवान प्रिय भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं। इसलिए आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परचरं देवी तद्रिया नाम। एक आदमी कृष्ण की सेवा करता है और दूसरा राधा जी की सेवा करता है, किस पर अधिक प्रसन्न होंगे, राधा जी की सेवा करता है। कोई आदमी नंद बाबा की सेवा करता है, कोई कृष्ण की सेवा करता है, किस पर प्रसन्न होंगे, नंद बाबा वाले सेवक पर। इसी तरह से समझो। इसलिए कृष्ण की अपेक्षा उनके जो परिकार सेवक हैं उनके ऊपर में प्रीति अधिक रखो यदि भक्ति में बढ़ना चाहे। कृष्ण यदि कृष्ण को गंध मिल गया जो हमारे भक्तों की ये सेवा करता है श्रेष्ठ भक्तों की, तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तृणं गृहीत्वा दशनैं ससाधु नमन पृच्छत् स स्वरूपमेव चर स्थिर प्राणी गणांश कृष्ण कुतो अस्ति दृष्टो अत्र किमु त्वये इति। इसके बाद में जब सुना दिया उनको, उन पर कृपा कर दी स्वरूप जी ने उस ब्राह्मण के ऊपर में, वह ब्राह्मण तीर्ण ग्रहण किया दांतों में अत्यंत दीनहीन होकर के और अपने गुरु स्वरूप जी के चरणों में गिर गया। कहां पर? वृंदावन में जमुना के किनारे एक सुंदर कुंज में, वहीं पर कथा हो रही थी। अब कहां चले? एकदम पहले में चले जाइए, वैसी कुंज में इतने देर सुनने के बाद उनके चरणों में गिर पड़े और व्याकुल होकर के बड़ी और पूछने लग गए, कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ, मेरे कृष्ण कहाँ, इस प्रकार से पूछने लग गए। आपने कभी उनको देखा? अपने गुरु जी से कह रहे, कहीं देखा? इस प्रकार त्रिणी लता गुल्म सबके पास में गए जाने लगे। किसी पेड़ को देख करके कहते हैं कि आप हमारे ऊपर में कृपा, आप तो वृंदावन के, आप मुक्त पुरुष हैं, आप हमारे ऊपर में कृपा। पेड़ से पूछते हैं, आप तो पुराने बंसी भट्ट हैं ना, आपके यहाँ पर रास हुआ था, कृष्ण को देखा, गोपियों को देखा, ऐसे पूछे। हिरण मिल गया, उसके गले लग गया और उनसे पूछे, कहीं राधा कृष्ण को देखा? जैसे नित्यानंद प्रभु जी गले में मिल करके सबसे पूछते हैं, कहा जी ये भूत आ गया, ये क्या, सब लोग भाग रहे हैं और उनको पकड़ करके पूछते हैं, गैयों के एकदम गले से लिपट जाते हैं, कहा जी वही गैया, तुम बतलाओ तो कृष्ण किधर गए, कन्हाई मेरे किधर गए। नमामि कृष्णस्य मनोरमानि संकीर्तनं यस्य पदौ गृहीत्वा प्रेमाभिमग्नं मग्नस्य गुरोः रोद तत् प्रेम दृष्ट्वा विवश विप्रः। अब वो कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। क्या कृष्ण नाम का कीर्तन? जो उन्होंने गुरु जी ने बतलाया था, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर, नंद किशोर हासी जसोदा तनय प्रसिद जीवन बल्लवी जीवन राधी। इस प्रकार से कीर्तन करने लग गए, गुरु के चरण कमलों को धारण करके रोने लग गए। गुरु भी शिष्य के ऐसे भावों को देख करके कहा, आज मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा शिष्य मिल गया हमको। और उन्होंने उनके गले से पकड़ लिया, उन्होंने आलिंगन किया, अब प्रेम समुद्र में एकदम मग्न, गुरु भी ऐसा शिष्य भी ऐसा। इस प्रकार से महाप्रेम के वेग से दोनों विवश हो गए। निमज्जित होकर के अंतरंग लक्षण, बाहर से ऊपर का लक्षण क्या है? रो रहा है, जमीन में लोटपोट रहा है, कृष्ण कृष्ण कह रहा है, और अंतरंग उसका क्या लक्षण? प्रेम रस में डूब गया। दोनों इस प्रकार से महाप्रेम में बातचीत करने लगे विवश होकर के। श्री कृष्ण का मनोरम चरित्र, ये सब जितने भी नाम हैं स्वप्रिय नाम बहुत ही मनोरम है, अथवा कृष्ण के मनोसुख संपादन के लिए मनोरम संकीर्तन करते हुए कृष्ण के नामों का, हा कृष्ण कृष्ण इति किशोर शेखरम तं दर्शयस्वेति रुरोद सब द्विज, हा कृष्ण आप कहाँ हैं, हे राधे तब नहीं, इतने सखा स्वभाव वाले, दूसरा कोई होता तो वो कहते हा राधे है, अभी दर्शन का, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी करते हैं। इस प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को आलिंगन करके वो भी रोने लग गए। शिष्य का प्रेम दर्शन करके उनको द्वेष नहीं होता, हमारा शिष्य हमसे भी बड़ा होने गया या ऐसा हो गया। आजकल के गुरुओं का ऐसा हो सकता है, किंतु उन लोगों में कोई द्वेष नहीं। उनको देख करके उनका हृदय और भी द्रवित होता, प्रेम में समुद्र में वो डूब गए। इसलिए विवश होकर के स्वभावतः ही प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। थोड़ी देर के बाद में जब महाप्रेम का वेग कम हुआ, खनात महाप्रेम जवेन जंत्रितो बने महा उन्मत्तवत उत्थितो भ्रमण विमूर्छितस्तत्र कंटकाचिते कंटको काचिते करीर कुंजे व्यपात माथुरः। थोड़ी देर में जब महावेग जब प्रेम का कमा, वो माथु ब्राह्मण उन्मत्त की भांति बन बन में भ्रमण करता हुआ कंटकों से भरे हुए करील के कुंजों में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। करील कुंज वृंदावन में अधिकांश ऊपर से दिखते हैं करील कुंज, किंतु उनके लिए करील कुंज जैसा नहीं, उनके लिए खूब सुंदर सुंदर कुंज बन गए। हम लोगों की दृष्टि में ऐसे करील कुंज इत्यादि दिखे, और उन लोगों की दृष्टि में कैसे माधवी कुंज, स्वानंद सुखद कुंज, मालती कुंज और कौन कुंज, कितने सुंदर सुंदर कुंज, ये सब ऐसे कुंज दिख पड़ेगा। उन कुंजों में जाकर के मूर्छित हो गए। क्यों मूर्छित हो गए? या तो कृष्ण को देखे नहीं, विरह नहीं संभाल सके इसलिए, या वहां जाने पर देखा राधा कृष्ण दोनों जुगलों का दर्शन किया, और दर्शन करके आनंद अतिरे आनंद के मारे एकदम विफल होकर के, आनंद को रख नहीं सके, इतना आनंद हुआ, मूर्छित होकर के गिर पड़े। माता सपत देव विमिश्रितांगवान हम्बार वई वेणु विषान निकन निकना तन्वे बीना दलवाद्य चर्चिता जाता गभीरा मधुरा विदूरत। मैया, अरे मैया, कौन कह रहा परीक्षित मारे? मैया क्षणकार में ही देखा गैया हम्बा हम्बा करती हुई धूल आकाश में उड़ने लग गया। देखा लाखों करोड़ों सखा लोग गऊओं के पीछे पीछे मुरली की तान छेड़ते हुए और सिंगा बजाते हुए बड़े आनंद से कृष्ण कृष्ण कौतूहल से कुलाहल करते हुए वहां से चलने लगे। उनकी वेणुध्वनि सिंगाध्वनि गयों का हम्बारम सुनाई पड़ा, धूल दिखाई पड़ी आकाश में भर गया, परिव्याप्त हो गया। परीक्षित जी देख रहे हैं, मानो एकदम साक्षात नेत्रों से ही देख रहे हैं समाधि स्थिति में। तौ प्रापितौ बोधमी भेरु उत्थितौ तद्दीर्घ दीर्घानादा विमुखे अभ्यधावताम गोपालदेवम तम पश्यताम अथो सुश्याम गात्र दूती मंडले उज्ज्वलम। उसी समय में वेणु और बिना की ध्वनि के प्रभाव से गुरु और शिष्य दोनों चैतन्य हो उठे। अरे कहाँ से ये ध्वनि आ रही है? गयों का हम्बार आ रहा है उनके कानों में पड़ने से वो चकित होकर के उठ करके खड़े होकर के देखने लगे, ये बिना ध्वनि कहाँ से? बड़ी कृपा है जो आज वो ध्वनि सुन रहे हैं वेणु, नहीं तो वेणु की ध्वनि यहाँ पर बजने पर भी हम लोग नहीं सुन सकते। उठ करके खड़े हो गए और उसी तरफ में दौड़ रहा है जिसमें भी ध्वनि हो रही है। देखा वो श्यामल अंगों पर तेज की पुंज प्रकाशित हो रही है, बहुत ही सुंदर श्यामल कांति से युक्त गोपाल देव का दर्शन किया। वैश्यों के साथ में धनुओं को लेकर वेणु वादन करते हुए गजेंद्र गति से मत्त हस्ती शाव की भांति हिलते डुलते नित्य भंगी से वो गायों को लेकर के अब गोष्ठ की तरफ में आ रहे हैं। कितना हो गया, आज यहीं तक। इसके बाद में कैसे वो कृष्ण उनसे मिलेंगे, कैसे बातचीत होगी और अपना सखा बना लेंगे और स्वरूप के हाथों में अपने इस ब्राह्मण को सौंप देंगे, वहां पर भी नित्य लीला में भी ये सब का वर्णन है। इसके बाद में सुंदर सुंदर श्लोकों की व्याख्या आएगी, हम लोग उसका पाठ करेंगे। खूब मन से सुनिए और आचरण करने की चेष्टा करें, साधुओं के पूरे व्यवहार को भी आचरण करने की चेष्टा करें।
अथर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके तवैवास्मि तवैवास्मि
जिस समय जन शर्मा गोप कुमार की कृपा से, स्वरूप की कृपा से गोलोक वृंदावन में गया और वहाँ वृंदावन में विचरण करते हुए सपरिकर कृष्ण को देखा। जब वे गायों को लेकर वन से लौट रहे थे, उनका वह अभिलाष देख करके अत्यंत प्रेम में विभोर हो गए। उस समय वो आनंद को सह न सके और पृथ्वी में दोनों लोटपोट हो गए। लोगों ने समझा ये साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, किंतु उनके शरीर में तनिक भी होश नहीं था। कृष्ण बलदेव जी के साथ में वहाँ पर उपस्थित हुए और अपने प्रेम में पगे हुए इसको देखकर अपने सुशीतल कर कमलों से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो दोनों चेतन हुए। चेतन होते हैं कृष्ण ने अपने दुपट्टे से, पीताम्बर से उनका मुख और सारा शरीर का धूल झाड़ने लगे। बोले, मैं कब से तुम लोगों की प्रतीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ब्राह्मण, आपके प्रभाव से मैं अपने परिवार के सहित नंद बाबा यशोदा मैया, बलदेव जी रोहिणी मैया और जितने परिवार के लोग हैं, स्त्री माने गोपियाँ और गोप हैं, मैं कुशल से हूँ। मैं अपनी आपकी कृपा से आकर्षित होकर के मैं सब समय आपकी चिंता करता था और सोचता था कि कब आप आएंगे। यह बड़े मंगल का विषय है, कल्याण का विषय है कि बहुत दिनों तक आप मेरा स्मरण नहीं करने पर भी अंत में आपने हमारा स्मरण किया और बहुत दिनों के बाद में मैंने आपका दर्शन किया। अभी आप कर रहे हैं, अभी ब्राह्मण समझ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पाया। मेरा जीवन आपके जीवन के अधीन है। अब आप कृपा करके हमारे साथ में अब विहार करें। मैं जहाँ रहूँगा, जहाँ पर क्रीड़ा करता हूँ हमारे सहित, आप विहार कीजिए। अभी तक भगवान उनको ब्राह्मण मान रहे हैं और उनको आदर दे रहे हैं, कृपा उनकी है, उनकी कृपा है, किंतु अभी कृपा गौरवपूर्वक, अभी विषम्भ रूप में नहीं है। क्यों? अभी तक इनका भी अंदर भी ब्राह्मण का अभिमान है। जब तक ब्राह्मण का अभिमान रहेगा या किसी दूसरी जाति का अभिमान रहेगा, वो वैसे ही उनकी दया। इसलिए गोलोक में पहुंच गया, इसी का नाम है कसाय। गोपियों में जो कि घर के भीतर में अवरुद्ध थी, उनके भीतर भी ऐसा ही कसाय होगा। उस कसाय को दूर किया विरह तीव्रताप से, और अपने उनके आँखों के माध्यम से हृदय में जाकर के उनको आलिंगन कर, तब ये कसाय जाए। ये कसाय समझना भी साधारण बात, बहुत सौभाग्य की बात होगा तो इस कसाय को लोग समझे। गोलोक वैकुंठ में पहुंच गया और वहाँ तक कसाय नहीं गया। अब नित्य परिकरों के साथ में मिलेगा कौन? यही स्वरूप दामोदर जी हैं, स्वरूप जी। अभी तो गुरु रूप में उसके पास थे, और यहाँ पर आएंगे तो किस रूप में हो जाएंगे? वहाँ पर स्वरूप थी गोप कुमार के रूप में। अभी तक उनको कथा सुनाई, गोलोक वृंदावन में ले भी गए, किंतु भीतर में जो अभी ब्राह्मणत्व का आकर्षण था ये अभी दूर नहीं गया था। इसलिए अब संग से, कृष्ण के दर्शन से, परिकरों के दर्शन से उनमें ये भाव आएगा। इसलिए उस चीज़ को पूरा करने के लिए कृष्ण कुछ करेंगे या अपने परिकरों से कराएंगे, यहाँ पर स्वयं ही कर रहे हैं। परिकरों का करना भी उनका ही अपना करना है। अब ये जो मैं बतला रहा हूँ अपने इसको पढ़ करके अनुभव से, अब कितने आदमी इसको समझेंगे मैं नहीं कह सकता। है तो बड़ी सीधी सरल बात, किंतु समझना भी बहुत कठिन है। अभी पढ़ रहा था, देखा मैं इस सब सिद्धांतों को लिखने में संकोच कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोसाल रस के सिद्धांतों को जो अत्यंत सुगोप्य हैं, किंतु गंभीर रूप में विचार करने से मैंने देखा कि यदि नहीं बतलाया जाएगा तो जगत से ये विद्या ही लुप्त हो जाएगी, ये सिद्धांत ही लुप्त हो जाएगा। जिस चीज़ में मेरा भय था, जिसके लिए भय था, वो तो देखते हैं कि अपने आप वो दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे काग नीम फल पर बैठता है, नीम के पेड़ पर निमौरी खाता है, ऊंट बबुल पेड़ के कांटों को खाते हैं, आम के पत्ते पर जिस पर कि मधु रहता है उसको नहीं स्पर्श करते, उनकी रुचि नहीं होती। भक्त रूपी कोकिल ही आम्र पल्लवों के रसास्वादन करते हैं, उस पर मधु छाया रहता है। ये मधु, यही मधु सिद्धांत। भक्त रूपी जो कोकिल हैं वो तो इन रस सिद्धांत के आम के पेड़ों पर पत्तियों पर रसास्वादन करें, और ऊँटों को और कागों को कौओं को इसमें रुचि नहीं होगी, इधर आएंगे नहीं। इसलिए हमारा जो डर था जो ये सब जान करके उत्पात करेंगे, इनसे कहना नहीं चाहिए, वो तो अपने आप हो गया। इन बैरमुखों को इसमें रुचि नहीं होगी, इसलिए इसको बेकार समझ करके पढ़ेंगे नहीं। जहाँ पर जिस सभा में इस सब की आलोचना होगी, अनुशीलन किया जाएगा, वो सभा में नहीं आएंगे, आ रहने पर भी उठ करके चले जाएंगे, कह जाए ये बेकार की काम की बात करते हैं, इसलिए सुनेंगे नहीं। और भक्त कोकलों को ये सुन करके बड़ा भारी आनंद होगा। इसलिए जिस विषय का डर था वो तो अपने आप दूर होगा, ये सुनेंगे ही नहीं, रुचि नहीं होगी, छोड़ करके भाग जाएंगे, उसको अछूत समझेंगे, ये छूने योग्य नहीं है, उसको अपने समाज से बाहर कर देंगे। जैसे एक गांव था आसाम में, गुरुजी का वहाँ पर कोई एक शिष्य था, तो उसने गुरुजी को पत्र लिखा जे गुरुजी आपके कहने से हमने पान बीड़ी सिगरेट ये सब बंद कर दिया है, किंतु गांव के समाज के लोग कहते हैं तू बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, मदिरा नहीं पीता है, हुक्का नहीं पीता है, इसलिए तुमको समाज से बाहर कर देते हैं, अब तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं लेंगे। और तुम्हारा तुम्हारे इस गांव में धोबी नाई सब लोग तुम्हारा बाइकॉट करेंगे, हम लोग सब सामाजिक क्रियाओं से तुम्हारे साथ में आदान प्रदान बोलना चलना विवाह शादी ये सब बंद सब खत्म। बहुत रो रो करके लिखा। गुरुजी ने कहा था अरे तू बेटा रोता है दुर्भागा, रोने की क्या जरूरत, अरे जिस चीज़ को त्याग करने के लिए बात हमने कही थी तू नहीं कर सकता, गांव वालों ने तुमको अलग कर दिया, ये तो बड़े आनंद की बात है, अब तुम खूब आनंद से अकेले भजन करो, उन लोगों का छुआ हुआ मत लेना, उनका देखा हुआ स्पर्श किया हुआ कोई चीज़ मत ग्रहण कर, और उन लोगों के साथ में अपनी बेटी बेटे का विवाह मत करना, तुम्हारे लिए बेटा बेटी बहुत मिल जाएंगे विवाह करने के लिए वैष्णव में, उनके साथ में ये विचार क्या जरूरत है उन लोगों को। सुन करके बड़ा आनंदित हुआ और फिर अपने आप वो काम हो गया। इसलिए ये कहते हैं उनका जो यह था भाव वो कैसे दूर किया कृष्ण ने। प्रच्छिद महाराज जी कहते हैं समग्र सभ्रम प्रेमानंद भरेण जंतित नाशकत प्रतिबोध वक्तुम तंग जन्म शर्मा अपि भिक्षुतुम। वो जो जन्म शर्मा जन्म शर्मा ब्राह्मण जिसको कृष्ण ही कहते हैं कि तुम जन्म शर्मा ब्राह्मण है क्योंकि उसी रूप में ये सुन रहा था गोप कुमार की बातों को, और केवल मात्र सुनने से और उनके स्पर्श करने से जैसा का तैसा चला गया। इसे परीक्षित महाराज जी कहते हैं मैया देखो यह कृष्ण की बातों को सुन करके यह ब्राह्मण जन शर्मा बड़े गौरव के साथ और प्रेमानंद नंद में अधीर होकर प्रेमानंद में अधीर हुआ, किंतु कैसा प्रेमानंद गौरव प्रेमा। इसे कृष्ण को प्रीति नहीं है तो भी अभी कृपा तो जरूर करेंगे, वो अधीर हो गए और कुछ बोल न सके। यदि यही बात स्वरूप को कहते तो क्या होता गोप कुमार जी को, गोप कुमार क्या कहता अरे हमको क्यों ठगता है तू, हमको ठग अपनी भारी भूरी मत दिखलाओ। बस उसी समय उनको लेकर के आलिंगन करके चुंबन कर लेता है और अपने अंगों की धूली उनके अंग में लगा देता है, अरे तरे बोल देता है, किंतु अभी ये नवीन है। ब्राह्मण के कंठ रुद्ध हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी कृष्ण की कृपा ऐसी देखकर। वे कृष्ण के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करके रोने लग गए। देखो अभी अभी सभ्रम गौरव भाव है, अभी भाव नहीं आया। बाष्प कंठ रुद्ध कंठ सन सोपहत लोचन परम तच्चरणाम भोजे मुद्नि धित्वा रुदंतम रुदंतरान। वे उनके चरण कमलों को अपने सिर पर लेकर के रोते हुए रुद्ध गले से वो कहने लग गए कृष्ण ने देखा संसार में सबसे बड़ी मेरी सबसे अधिक प्रिय मेरी आत्मा है, मेरा यह शरीर है, यदि ये भी इसको दे दूं इस प्रेम के बदले तो भी इसका ऋणी रह जाऊंगा, हमारा इससे अपसरी से कोई अधिक प्रिय नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या दूं। ब्रह्मा जी ने भी कहा है यदि पुतना को बाल घातनी और रुधिर को पीने वाली बच्चों के रक्त को पीने वाली केवल माता का ऊपरी वेश बनाया और कृष्ण को मारने के लिए विष भरा स्तन उनके मुख में दिया और कृष्ण ने उसे धात्री उचित गति दे दी तो ये गोपियों को क्या देंगे जो सचमुच में बात्सल्य रस में उत्प्रोत होकर के उनको स्तन पिलाती हैं प्रेम को, उनको क्या देंगे, मैं तो कुछ नहीं देखता, और उन गोपियों को क्या देंगे जिनके लिए कहें मैं इनका चीज काल तक उऋण रहूंगा, क्या देंगे? ऐसे कृष्ण उदार हैं। इसलिए कृष्ण सोचे मैं क्या दूं, कुछ नहीं देखा, भाव में आविष्ट हो गए। किस लिए? देखो बहुत प्रतीक्षा के बाद में यह जीव कृष्ण के चरणों में आया, उनके चरणों में लौट गया उसको देने के लिए। तो वहां के जो प्रेम से सेवा करते हैं, ये अभी तक सेवा नहीं किया, सेवा करने की इच्छा किया। आज जो लोग वृंदावन में गोलोक में रह करके गोपी भाव में यशोदा मैया के रूप में उनको सेवा करते हैं, उनको क्या देंगे? इसलिए अपने गले का हार, अपना अंगद, अपना यहाँ का अलंकार और जितने अलंकार थे वो सबको निकाल निकाल के अपने हाथों से उनको विभूषित करने लग गए। आत्मानुकंपम इथम आत्मानुरूपम सब व्यतनो तो परमाम कृपाम जन शर्मापि तेनेव परिपूर्णार्थताम गतः। इथम ऐसी भगवान की करुणा है, ऐसे परम उदार है, उन्होंने अपने समान उसको बना दिया। अपना समान कैसे बनाएंगे? यदि उसको गोप बना देंगे, गोपों का रूप धारण करा देंगे। इसलिए अपने जितने भी अलंकार थे वो सब एक एक करके निकाल करके उसको धारण कराने लग गए। उसके सिर पर मयूर पंख बांध दिए, हाथों में बांसुरी दे दी, गोपों जैसा वेश बना दिया, पीतांबर पहना दिया। वो गले में माला होती है घुगची, लाल और काला वाला गुंजा माला पहना दी, सुंदर सुंदर फूलों के वन माला पहना दी, हाथ में एक लठिया दे दी, हो सकता है कि कमली भी काली दे दी गैया चराने के लिए, और ठीक गोप जैसा वेश उनको बना करके और आलिंगन किया। इससे जन शर्मा भी तेन एव कृष्ण के द्वारा ही परिपूर्णार्थतांगतः परिपूर्ण मनोरथ हो गया। क्या परिपूर्ण मनोरथ हुआ? जैसे स्वरूप जी अर्थात गोप कुमार जी गोप थे, कृष्ण के सखा थे, ऐसे ही इनको भी अपना सखा जैसा बना दिया और एकदम रूप बना। ये सारूप मुक्ति जैसा दिखता है किंतु सारूप मुक्ति नहीं है, गोलोक वृंदावन में सखा का भाव उन्होंने दिया। सनातन गोस्वामी इस श्लोक को लिख करके उसी की टीका करने लगे, कहते हैं इत्थम अनेन प्रकारेण इस प्रकार से विप्र के प्रति जन शर्मा के प्रति कृष्ण का अनुग्रह का वर्णन करने लगे। यदि कोई देखो ये क्रम विकास है, गोप कुमार जैसे सबसे पहले प्रयाग में, प्रयाग से दक्षिण देश में, दक्षिण देश से जगन्नाथ में, वहाँ से इंद्रपुरी, फिर ब्रह्मपुरी, उसको पार करके फिर वृंदावन में आए, फिर यहाँ से फिर चले गए ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, फिर वहाँ से आए लौट करके वृंदावन, और फिर वहाँ से फिर चले गए अपने गुरु जी का संग करके। कहाँ चले गए? बैकुंठ में, बैकुंठ में चले गए, वहाँ से गए अयोध्या, अयोध्या से द्वारका, द्वारका से फिर लौट करके फिर प्रकट वृंदावन में आए, और फिर प्रकट वृंदावन के बाद में वैसा ही साधन भजन करके संकीर्तन के माध्यम से एकदम गोलोक वृंदावन में कृष्ण के सखा के रूप में पहुँचे। इनको इस प्रक्रिया में साधन भजन में अनंत कोटि जन्म लगा, करोड़ों करोड़ों अनंत समय लगा। कितना समय लगा, कितना जन्म गया इसका कोई पता नहीं, और एक घंटे में अपने शिष्य को बैठा करके और सारी अनुभूति उसको सुना करके, और सुनाने पर भी यदि नहीं समझा, अनुभव हुआ, समझ तो गया किंतु अनुभूति नहीं हुई, आँखों द्रवित नहीं हुई, हृदय द्रवित नहीं हुआ, और उनके बाद में जहीं स्पर्श किया तो ही सब कुछ और एकदम सीधा गया, बोलो वृंदावन में जहाँ कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। ये अहेतु की कृपा का निदर्शन है, अहेतु की कृपा। और स्वरूप दामोदर का क्या था, स्वरूप जी का, उनका साधन भजन करके क्रम पंथा से वहां पर गए और इनके ऊपर में अहत की कृपा से साक्षात भगवान ने चिंतन किया, विचारा कि इस ब्राह्मण ने हमको आत्मा पर्यंत दान किया है। हियर वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्ण, हाउ ही reflected his mercy on Jan Sharma Brahmin who takes shelter in the lotus feet of his Gurudev Gop Kumar or Sarup. Without doing any practice or bhakti yoga, only one of that, only hearing of Krishna Katha, he became liberated and went direct to the Golok Vrindavan where Krishna was playing with cowherds. And Krishna made him his most dear friend, cowherd. And himself he gave this. He decorated.